सबसे पहले हम एक पावरफुल सहयोग देंगे और वो होगा हमारे संकल्प का सहयोग, क्योंकि जब बात चलती है कि ये सृष्टि कैसे रची गई तो सबकी जुबान पर एक ही आंसर होता है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। अगर ब्रह्मा संकल्प से सृष्टि रच सकता है तो हम सब एक साथ एक पावरफुल संकल्प करके बाबा का सेवा स्थान भी रच सकते हैं, जिसमें हमारे संकल्प का, दृढ़ संकल्प का बहुत बड़ा भारी रोल होगा। दूसरा, मोदी जी ने तो ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का शुरू किया, 50 दिन दिए, लेकिन जब ऊपर की गवर्नमेंट हमारे सफेद और ब्लैक कर्म का हिसाब किताब लेगी तब 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे। उससे पहले कि ऊपर की गवर्नमेंट, जो बड़े आला अफसर ऊपर बैठे हैं, जो कर्मों का हमारा सारा लेखा जोखा लेंगे, अगर आज इस वक्त वो मेरे सामने आ जाए और मेरे कर्मों का खाता खोलकर देखे कि कितने ब्लैक कर्म हैं और कितने सफेद, तो परसेंटेज किसकी ज्यादा होनी चाहिए, किसकी ज्यादा होनी चाहिए जी? सफेद। विशेष ध्यान रखेंगे कि जो धन मेरे पास है वो सुखदाई बन जाए। धन जरूर लाइए, मेहनत से, हक से कमाइए, कोई मना नहीं है, परंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि जब हम अपनी जेब में धन लाते हैं तो 2 चीजें और साथ में लाते हैं, और वो 2 चीजें होती है किसी की दुआएं और किसी की बददुआएं। तो जब जेब में नोट रखे, एक बार ये भी विशेष ध्यान दे दें कि इस नोट के साथ दुआएं जा रही हैं या दूसरी बात, जब वो मेरे हाथ में आता है तो कैसे आता है, किसने किस ढंग से कमाया है, उसको हम पवित्र धन के रूप में भी अपने संकल्प से उसको एनर्जी देकर चार्ज करके अपने घर की भी बरकत बढ़ा सकते हैं और बाबा के सेवाओं में भी बरकत कर सकते हैं। तो एक छोटे से प्रयोग से हम शुरू करेंगे, विशेष ध्यान देंगे कि देखिए किसान लोग जब खेती बोते हैं तो जो उनके हाथ में फसल आती है उसके वे 3 हिस्से करते हैं। एक, अपने घर का स्टॉक भरते हैं, सबसे पहले घर की पूर्ति करेंगे, पूरे साल का चावल आया, दालें आई या जो भी आया, जो घर में लगेगी पहले वो हिस्सा निकाल लेते हैं, अच्छा सा, कितना भी बड़ा हिस्सा क्यों ना, खुशी खुशी निकाल लेते हैं। दूसरा हिस्सा जो एक्स्ट्रा है, वो घर के हिस्से से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो हम बेचने के लिए निकाल लेते हैं, मार्केट में जाके बेच के आते हैं, पैसा ले आते हैं। एक बहुत छोटा सा हिस्सा और हम निकालते हैं, वो छोटा हिस्सा होता है, वो किस लिए निकालते हैं जी? किस लिए? नेक्स्ट फसल के लिए। बीज नहीं रखेंगे तो अगली फसल नहीं मिलेगी, और जो हम नेक्स्ट फसल के लिए रखते हैं वो हिस्सा कितना सा होता है? वो थोड़ा सा। सेम ऐसे ही कर्मों की भी दौलत है, जो मुझे मेरे कर्म अनुसार मिला है खूब उसे अपने पास रखूं, यूज करूं, अपनों के लिए, सबके लिए, ठीक है ना, खूब इस्तेमाल करूं, कुछ सेविंग रखूं, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा जरूर रखूं जिससे नेक्स्ट फसल मिल जाए मुझे। अगर बीज ही नहीं रखा तो नेक्स्ट फसल, समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूं? राइट, समझ में आया? अभी आपके पास कोई सिक्का हो, नोट हो, दोनों हाथों में रखेंगे, एक अपने घर की बरकत में रखेंगे और एक बाबा की बरकत में रखेंगे, एक ही संकल्प से। बाबा ने कहा जब तुम एक ही संकल्प में स्थिर होकर के संकल्प करते हो तो वो संकल्प चमत्कार करता है। एक ही संकल्प में हम आज अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए और प्लस बाबा की सेवाओं की बढ़ोतरी के लिए करेंगे। अगर आपके पास हो तो दोनों हाथ में रख सकते हैं, रखिए। हम योग के द्वारा कमेंट्री कराएंगे और उसको चार्ज करके पैसे को उसमें एक अच्छी एनर्जी भरकर, एक अच्छा शुभ संकल्प भरकर अपनी बरकत में और बाबा की भंडारी में डालेंगे। दो हाथ में राइट हैंड में बाबा की भंडारी के लिए रखेंगे, लेफ्ट हैंड में अपने घर की बरकत के लिए रखेंगे। अगर ना हो तो एक दूसरे से उधार ले सकते, कल वापस कर देना, मैं भी लेकर बैठी हूं। पूरे विश्वास के साथ जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा ही आप संकल्प करते हुए फील करेंगे, महाज्योति से मुझे एक तेजस्वी प्रकाश मिल रहा है और वो प्रकाश मेरे मस्तिष्क से होता हुआ मेरे हाथों में इस नोट को बहुत पावरफुल, बहुत ही चार्जेबल बना रहा है। इतना चार्जेबल बना रहा है कि ये धन को अपनी ओर आकर्षण कर लेगा, धन को आकर्षित करेगा, सुख को आकर्षित करेगा, बरकत और समृद्धि को आकर्षित करेगा। इस प्रकार का संकल्प करके हम इस नोट में एक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी भर के रखेंगे। एक दृढ़ संकल्प के साथ सभी 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। जैसा मैं बोलूं वैसा ही अपने मन को दिशा देंगे और ये फील करते हुए कि इस नोट को मेरे हाथों के माध्यम से खुद परमपिता चार्ज कर रहे हैं और मां सरस्वती जो हवनहार लक्ष्मी का रूप है वो बड़े स्नेह से प्रेम से इस नोट को दृष्टि दे रही हैं। अपने विचारों को समेट कर संकल्प करेंगे, आज से मेरे घर में जो धन आएगा वो दुआएं लेकर आएगा, मेरे हाथ से जो बाबा की सेवा में धन लगेगा वो सेवाओं में 4 चांद लगा देगा, सुंदर सौभाग्य को लेकर के आएगा, बढ़ोतरी करेगा, जो काम बाबा के असंभव है उस कार्य को संभव बनाएगा। आज से हम दृढ़ संकल्प करते हैं हम शुभ शुभ तरीके से ही धन कमाएंगे और शुभ कार्यों में ही लगाएंगे। हम अपने धन का सम्मान रखते हुए व्यर्थ बेकार के कार्यों से उसे बचाएंगे। हे धन, तुम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, हमें सुख साधन सब कुछ प्रदान करते हो। तुम जितने भी हमारे पास हो हम तुमसे संतुष्ट हैं और तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं। हे धन, तुम जब तक मेरे पास रहो शुभ शुभ कार्य में लगते रहो। और जब मेरे हाथ से किसी और के पास जाओ, उनकी भी बिगड़ी बना देना, उन्हें भी बरकत कर देना, उनके लिए भी मंगलकारी बन जाना। महसूस कीजिए, बाबा और मम्मा मेरे दोनों हाथों को दृष्टि दे रहे हैं, अपनी फुल पावर मेरे हाथ में रखे धन में एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह भर रहे हैं। संकल्प कीजिए, आज हम युग परिवर्तन के लिए, बाबा के विशेष कार्य के लिए, उसके सपूत बच्चे बनकर, कमाऊ बच्चे बनकर, आज दृढ़ संकल्प करते हैं जो मेरे हाथ में ये धन है, इस धन में इतनी बरकत हो कि ये जो शुभ कार्य बाबा का होने जा रहा है, ये निर्विघ्न पूरा हो जाए। इस धन से नवयुग निर्माण में मेरी ओर से भी एक ईंट अवश्य लगे। पूरी शुभ भावनाओं के साथ तन मन धन के सहयोग के साथ ये धन स्वेच्छा से, बड़े सम्मान से मैं बाबा को, बाबा के नए घर के लिए अर्पित करती हूँ, अर्पित करती हूँ। दूसरी मुट्ठी में जो मेरा धन है, ये मेरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास करे, मेरे बच्चों को संस्कारी बनाए, सद्मार्ग पर लाए, मेरे घर में सबके मनों में संतोष का वास हो, चित्त में शांति हो, प्रेम की गंगा बहे, निरोगी काया हो, निर्विघ्न जीवन हो। और पवित्र धन को अपनी तरफ ये धन आकर्षित करता रहे, दिन दुना रात चौगुना ये धन बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। फिर से देखिए, बाबा की ब्लेसिंग इस ब्रह्मांड की संपूर्ण पॉजिटिव एनर्जी मेरे इस धन में मिक्स हो रही है। अब तीन बार समस्त ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को खींचने के लिए, अपनी मुट्ठी में भरने के लिए ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। धीरे धीरे लंबा सांस लेंगे। महसूस कीजिए एक बहुत सुंदर गोल्डन प्रकाश चहुकोर से आकर मेरी मुट्ठी में समा गया है। पुनः धीरे धीरे सांस लेंगे और बोलेंगे सभी मेरे साथ, ओ ऐसे ही पकड़ के रखेंगे क्लास के बाद, घर वाला घर की बरकत में और बाबा वाला बाबा की बरकत में। कहते हैं ये संसार सुख और दुख का खेल है। एक घर में दो बच्चे जन्मते हैं, एक अच्छी पोस्ट पर अच्छी बुद्धि वाला होता है और दूसरा मंद बुद्धि होता है। एक अमीर बन जाता है और एक गरीब। एक ही माता पिता ने जन्म दिए, संस्कार दिया, अन्न खिलाया, लेकिन नसीब अलग अलग। क्या परिणाम है ये? हमारे ही द्वारा किए गए हमारे पाप और पुण्य। अगर पुण्यों की परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, और पुण्यों की परसेंटेज कम है तो क्या होता है? कुछ भी अच्छा नहीं होता। वही सुख दुख के कारण बनते हैं। जीवन में भोगनाएं आ रही हैं, कष्ट आ रही हैं, तकलीफ आ रही हैं, 100% पुण्यों की कमी है। अगर हमारे जीवन में बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं है, मजे से गाड़ी चल रही है, सुख शांति समृद्धि सब कुछ है मेरे पास, तो समझ लीजिए कि आपकी दौलत खर्च होना शुरू हो गई। जो पुण्यों की दौलत मैंने जमा की थी वो खर्च होना शुरू हो गई, तो जरूरत किसकी है? कमाई की। क्योंकि वो खर्च होना शुरू हो गई, और जिस दिन खर्च होकर नील हो जाएगी उस दिन क्या होगा? भूखे मरने वाली नौबत आ जाएगी। और यदि मेरे जीवन में दुख बहुत है, परेशानी बहुत है, विघ्न बहुत है, भोगनाएं, समस्याएं, कष्ट बहुत है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब पुण्य नील हो चुके हैं और पुण्य कमाने की तेजी से आवश्यकता है। इमीडिएटली पुण्यों की आवश्यकता है, कैसे भी करके पुण्यों को बढ़ाओ। और जैसे ही पुण्य का प्रभाव ऊपर आएगा तो पाप का प्रभाव क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। और जिस प्रभाव के कारण विघ्न, परिस्थिति, समस्याएं आ रही थी जीवन में, वे क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे। जैसे ही पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा, पाप का नीचे आएगा, तो भोगनाएं, पाप और कष्ट भी क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। चाहे स्थिति सुख में है, चाहे स्थिति दुख में है, दोनों ही स्थिति में मुझे पुण्यों की आवश्यकता है। दोनों ही स्थिति में मुझे पुण्य चाहिए। और अब संगम युग पर, हम कलयुग से निकलकर संगम पर पहुंचे हैं, और अब सीधा सतयुग की तरफ टर्न किया है, यानी कि हमारा यू टर्न बन रहा है। जो डायरी पेन लाए हैं अपनी डायरी में यू बना लीजिए, इंग्लिश का यू। कलयुग से निकलकर हम सतयुग की तरफ टर्न ले चुके हैं और पूरा यू टर्न है, पूरा यू। एक साइड कलयुग जहां नेगेटिव एनर्जी है पाप है, सतयुग जहां पॉजिटिव एनर्जी है और पुण्य है। अब देखिए चमत्कार क्या हो रहा है। अगर आज भी मैं पाप कर रही हूं तो यू टर्न पर हूं। इधर से नेगेटिव एनर्जी पाप कलयुग की तरफ से एक शीरे से शुरू होता है और मैंने इधर से पाप अंदर डाला तो बाहर क्या निकल गया, इधर से दूसरी साइड में क्या है, पुण्य, पॉजिटिव एनर्जी। इधर से मैंने नेगेटिव एनर्जी डाली, पाप डाला तो बाहर क्या निकल गया इधर से, जी समझ में आया क्या निकला, पुण्य निकला। किसी को दुख दिया, समझ लीजिए आपके बैंक बैलेंस से 1000 रुपए गए। किसी को एक बुरा शब्द बोला, आपके बैंक बैलेंस से 500 रुपए गए। लेकिन यदि इधर से मैंने किसी एक को सुख दे दिया, पुण्य कर दिया, तो इधर से क्या निकल गया, दूसरे कोने पे क्या है, पाप। वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। बाबा कहते हैं बच्चे क्या बनो, पाप आत्मा की पुण्य आत्मा। पुण्य करते रहो, दुआएं दो, दुआएं लेते रहो, तो ये जो पाप भरे हैं ये बाहर हो जाएंगे। दो तरीके हैं, एक योग बल, योग लगता नहीं, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि एक कैंडल पर, एक मोमबत्ती की लो पर मैं कहूं कि चाय बना दो तो 6 महीने लग जाएंगे, चाय नहीं बनेगी। चाय बनाने के लिए मुझे उचित टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, हाई अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी जिस पे वो चाय बन सकती है। एक दीपक की लो पर चाय नहीं बन सकती। और मैं सोचू एक साधारण सी याद से मेरे जन्मों जन्मों के जो जंक चढ़ी है आत्मा पर, विकार चढ़े हैं, पाप चढ़े हैं, एक हल्की सी याद से, एक हल्की सी सेक से वो जल जाएंगे, इम्पॉसिबल। उसके लिए एक हाई टेम्परेचर की आवश्यकता है, जिसको बाबा ने कहा ज्वालामुखी योग। कैसी अग्नि हो उसमें, जैसी ज्वालामुखी में होती है। और वो कब होगी, जब हम अपने जीवन के 10 मिनट निकाल के उस ज्ञान सूर्य के सम्मुख बैठेंगे, महाज्योति के सम्मुख बैठेंगे, उसके महाप्रकाश के ओरे में बैठेंगे, तब वो महाप्रकाश के महावाइब्रेशंस मेरी आत्मा में प्रवेश करेंगे, तब जाकर के वो कहीं जलना शुरू होंगे। तो एक तो योग बल तरीका है और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा क्या तरीका। अच्छा ये बताइए कि पाप आत्मा बने कैसे, पाप चढ़े कैसे, क्या किया मैंने जो पाप चढ़ गई आत्मा पर, बोझिल बन गई आत्मा, भटक गई आत्मा, क्या किया ऐसा जी, देह अभिमान में आके क्या किया, बुरे कर्म किए ना, पाप कर्म किए ना। अब सोचने की बात है, थोड़ा IQ खोल के बैठेंगे। अगर एक पाप कर्म मेरी आत्मा को बोझिल बना सकता है, मुझे भटका सकता है, तो एक पुण्य कर्म इस बोझ को उतार नहीं सकता, विचार कीजिएगा, यस या नो। अगर भोगना ही आ गई है ना जीवन में, तो सिग्नल है इमीडिएटली तेजी से अपने पुण्यों को बढ़ाइए। अगर मैं एक पाप कर्म के प्रभाव से दुखी हो सकती हूं, तो 10 पुण्य कर्मों के, अच्छे कर्मों के प्रभाव से मैं इससे मुक्त भी हो सकती हूं। बात कर्मों की ही है, कर्मों का ही परिणाम दुख और सुख है। अगर एक पाप कर्म मुझे कष्ट तकलीफ दे सकता है, भटका सकता है, मनमुटाव दे सकता है, हार का मुंह दिखा सकता है, असफलता प्रदान कर सकता है, तो 10 पुण्य कर्म मुझे सुख भी दे सकते हैं, जीत भी दे सकते हैं, ताकत है पुण्य कर्मों में। अगर इमीडिएटली भोगनाओं से बचना है तो मुझे परम सद्गुरु को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। ऐसे तो बाबा से हमारे 3 रिश्ते विशेष रूप से होते हैं, बाबा ने तो खुली ऑफर दी कि सारे रिश्ते सारे संबंध मेरे से जोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो प्रकृति के बंधन में नहीं है। लेकिन विशेष तौर पर हम तीन संबंध बाबा से रखते हैं। एक नेचुरल सी जो नेचर बन गई बाबा के लिए वो है बाबा बाप की नेचर, एक आदत सी बन गई बाप रूप में उसको याद करने की, उससे संबंध बनाने की। जब हम कोई भी महावाक्य सुनते हैं या जब कोई भी मुरली सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तब वो हमारे सामने कौन से रूप में होता है? परम शिक्षक। एक बहुत ही प्यारा और अनोखा रिश्ता है बाबा के साथ, वो कौन सा है मालूम है? कौन सा है? परम सद्गुरु, से हम भूले रहते हैं। लेकिन ये इतना जोरदार रिश्ता है कि इसकी वैल्यू का हमें पता नहीं। माता पिता के सामने देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं दुनिया में भी, बच्चा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन यदि चार बच्चे हैं तो चारों को बांट के देना पड़ेगा, एक को नहीं दे सकता। प्यार अलग चीज है, फर्ज अलग चीज है। जितना है उतना ही देगा बाप, पड़ोसी का नहीं दे सकता चाह कर भी। इसी तरह से शिक्षक की भी एक कंडीशन है, प्रिय स्टूडेंट कितना भी हो लेकिन यदि पढ़ाई में कमजोर है तो जैसी मेहनत वैसा रिजल्ट। प्रिय स्टूडेंट है वो अलग बात है, प्यार अलग चीज है, लेकिन चाह कर भी कमजोर छात्र को टीचर अच्छे नंबर नहीं दे सकता, उसकी कंडीशन है। परंतु ये जो परम सद्गुरु है ये अनलिमिटेड है, इसके सामने कोई कंडीशन नहीं। अगर एक बार ये हम पर राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो फिर जो भगवान के बारे में कहावत है कि जब भगवान देता है तो क्या देता है? छप्पड़ फाड़ कर देता है, ये इसके बारे में कहावत है परम सद्गुरु। एक बार यदि ये हम पे प्रसन्न हो जाए, मैं इसे राजी कर लूं, तो ये मुझे अपनी समस्त शक्ति, नवरिद्धि, सर्व सिद्धि, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, दुआएं, वरदान प्रदान कर सकता है। हर सुबह मेरी गोडली गिफ्ट से स्टार्ट हो सकती है, और कभी ना कभी भगवान ने गोडली गिफ्ट दी है जो अब तक उसकी कहावत है। एक छोटी सी बच्ची बहुत अच्छा गाती है, 5 साल की, उसने कहीं सीखा नहीं है, केवल उससे पूछा तुमने कहीं इतना अच्छा सीखा नहीं, कुछ नहीं, इतना अच्छा गाती हो, सुरों में गाती हो कैसे? तो वो तोतला के बोलती है गॉडली गिफ्ट है मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ? कभी ना कभी उसने अपनी कला को भगवान के कार्य में लगाया और भगवान ने उसे क्या दे दी? जन्म जन्म के लिए क्या दे दी? गिफ्ट दे दी। गॉडली गिफ्ट लेने का समय चल रहा है अब भगवान से। जितनी चाहे गिफ्टें ले लो, बस इतनी सी लगा लो और उतनी सी, इतनी सी लगाओ और इतनी सी ले लो, सदा सदा के लिए ले लो। खुले भंडारे हैं अब उसके, अब वो देने आया है, लेने वाले चाहिए। लेने वाले के को भी तो दिल चाहिए ना, पात्र चाहिए, वो भी हर एक के बस का लेना नहीं है, लेने वाले चाहिए अभी। तो परम सद्गुरु को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? देखिए, जब किसी को राजी करना हो, खुश करना हो, प्रसन्न करना हो, तो दो बात विशेष रूप से देखी जाती है कि उसे पसंद क्या है और नापसंद। जो नापसंद है वो नहीं करेंगे, और जो पसंद है वो बार बार करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि ये खुश रहे, राजी रहे, प्रसन्न रहे हमारे से। अब परम सद्गुरु को बेहद पसंद क्या है वो बताइए, जो वो राजी हो जाए, मुझसे पर्सनली राजी हो जाए, क्या है बताइए जी? आज्ञाकारी। और क्या बोलते कुमार भाई बैठे हैं ना बहुत सारे, सच्चाई पसंद है परम सद्गुरु को। और देखिए मैं थोड़ा हिंट देती हूं, भक्ति मार्ग में भी वो प्रथा आज तक कायम है उसको राजी करने की। ज्ञान मार्ग में भी एक रीति रस्म, एक प्रथा है जो परम सद्गुरु को राजी करने के लिए चल रही है अब तक। अब बताइए क्या है ऐसा जी? सेवा भाव और प्रेम भावना, और थोड़ा नजदीक आए हो आप,
और क्या है, चलो थोड़ा और इंट देती हूं। परम सदगुरु को राजी करने के लिए ज्ञान मार्ग में वो प्रथा वो रीति रसम परम सदगुरु के लिए स्पेशल गुरुवार के दिन की जाती है। कभी ध्यान दिया इस भोग पर, क्या पसंद है उसको? और गुरुवार को ही क्यों लगता है, शुक्रवार को क्यों नहीं, बुधवार को क्यों नहीं, ये गुरुवार को ही क्यों लगता है भोग? किसका दिन है, दिन किसका है, ये गुरु का दिन है, ठीक है ना। अगर इमीडिएट पुण्यों में वृद्धि करनी हो तो भोग लगाइए, भोगनाएं मिटाइए, सीधा सा सिद्धांत है। तेजी से हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी होती है भोग लगाने से। दुनिया में पंडितों को, ब्राह्मणों को खिलाना, अन्न दान करना, गरीबों को खिलाना महापुण्य माना गया। किसी के ऊपर ग्रहचारी आ जाती है, संकट आ जाते हैं, नक्षत्र ठीक काम नहीं कर रहे, जीवन में बाधाएं बहुत हैं, वो पंडितों के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, कुछ रास्ता दिखा दो, क्या करें। तो देखिए, आपने देखा होगा इनडायरेक्टली वो भी कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य कराते हैं उनसे। मंदिर में ये रखाना, पानी में ये बहा देना, पंछियों को खिला देना, ठीक है ना, कराते कि नहीं कराते, इनडायरेक्टली पुण्य कराते हैं उनसे, ताकि इमीडिएटली पुण्यों के प्रभाव से आने वाली भोगनाई क्या हो जाए, थोड़ी नीचे आ जाए। जैसे ही पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा, पाप का प्रभाव क्या होगा और भोगनाई क्या होंगी, नीचे आ जाएंगे। कराते हैं ना, ये भोग है क्या? देखिए, जब तक हम मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते थे, हम जो चढ़ाते थे जू का तो हमारे हाथ में मिल जाता था वापस। हम हर गुरुवार को, हर फेस्टिवल को बाबा को भोग लगाते हैं, रोज लगाते हैं, भोजन का डेली लगाते हैं। एक भी दाना तो इधर से उधर नहीं होता, जू का तू रहता है, और फिर भी कर रही है, सदियों से कर रही है। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, कभी देखा आपने कि गुरुवार को भोग नहीं लगा? या हमने खाना बनाया हो सेंटर पर और बाबा को भोग ना लगाया हो? घरों की तो मैं बात नहीं करती, लेकिन सेंटर का ये नियम है, भूखे मर जाएंगे लेकिन बाबा को भोग लगा के खाएंगे। कोई भी सेंटर पे ऐसा नहीं होता होगा बनाया और खा लिया, पहले बाबा को ऑफर होती है, जबकि उसमें से एक भी दाना तो इधर से उधर नहीं होता, फिर भी लगाते हैं। क्या है ये भोग? आपने देखा कि जब भी कोई कर्म कांड होता है भगवान से रिलेटेड, तो बिना प्रसाद के अधूरा होता है कोई भी पूजा पाठ, भक्ति। पास हो, तीर्थ यात्राएं हो, यज्ञ तप हवन हो, जागरण जगराते हो, जहां भी भगवान वहां प्रसाद जरूर होता है। बिना प्रसाद के भगवान अधूरा है। व्यक्ति जन्मता है तो प्रसाद, उसके जीवन में जो भी शुभ संस्कार होते हैं तो प्रसाद, इवन जब उसका अंतिम संस्कार होता है। तो हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जब तक उसकी तेरामी नहीं होगी, उसके नाम का प्रसाद भोग बनाकर खिला दिया ना जाए, तब तक उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या रहस्य है इस प्रसाद का, भगवान से इतना घनिष्ठ रिलेशन क्यों है? बिना प्रसाद के भगवान अधूरा, और भगवान को बेहद पसंद है ये, भक्त भी जानते इस बात को। इसीलिए भक्त भी देखिए भगवान की इसी रग को दबाते हैं बैठ करके, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी वीकनेस क्या है, उसका फेवरेट क्या है। वो कहते तो मेरी ये मन्नत पूरी कर दे, बस ये मनोकामना पूरी कर दे, और फिर मैं क्या करूंगा, क्या लालच देते हैं वो, तेरा मन पसंद प्रसाद तुझे आकर चढ़ाऊंगा। प्रसाद से लालायित कर देते हैं भगवान को, राजी कर देते हैं। तो इस प्रसाद में है क्या, जबकि दाना इधर से उधर नहीं होता और भगवान राजी हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाता है, मेरे बिगड़ते काम बन जाते हैं, मेरे पुण्यों में वृद्धि हो जाती है, ये है क्या प्रसाद? एक बड़ी अजीब सी घटना इस संसार में घट रही है। इस सारी सृष्टि का जो पालन करता है, पूरी सृष्टि की जो पालना कर रहा है वो भूखा है। सोच में पड़ गए ना, किसी के घर रोज 200 लोग भोजन खाते और वो खुद भूखा रहता हो, हजम होती है क्या ये बात? जो सारी सृष्टि का पालन करता है, पालना कर रहा है, वो खुद भूखा है। किसका भूखा है भगवान? भावनाओं का भूखा है। भाड़ा किसका देता है भगवान? लड्डू का, हलवा पूरी दाल चावल का? किसका भाड़ा देते हैं भगवान? भगवान भूखा है भावनाओं का। और ये भोग और कुछ नहीं, मेरे दिल की निस्वार्थ स्नेहमयी भावनाओं का प्रतिरूप है जो मैं भगवान को ऑफर करती हूं। जिस भोग में, जिस प्रसाद में भावना नहीं, वो एक तो प्रसाद नहीं, दूसरा भगवान को स्वीकार नहीं। उसके लिए वो दाल पूरी लड्डू ही है, उसके उससे ज्यादा और कुछ नहीं है, वो उसे पसंद नहीं, क्योंकि वो भूखा लड्डू का नहीं है, पूरी का नहीं है, हलवे का नहीं है, वो भूखा केवल मेरी भावना का है। और भाड़ा भी केवल भावना का ही देता है, इसीलिए दाना इधर से उधर नहीं होता, लेकिन एक चीज उसमें छोड़ता नहीं है वो, और वो है मेरी भावनाएं। उस भोग में से मेरी भावनाओं को खींच लेता है, उसकी भासना लेता है और उससे आनंदित तो होता है वो भूखा भगवान, तृप्त तो होता है। और जब वो तृप्त तो होता है तो फिर मुझे वो संतुष्ट करता है, मुझे तृप्त करता है, मुझे वो देता है जो मुझे चाहिए, वो सब कुछ देता है। तो भोग लगाने से इमीडिएटली पुण्यों में वृद्धि होती है। कईयों के मन में ये संकल्प आते हैं कि क्या ये भोग बाबा के पास पहुंचता भी है या यूं ही खेल पाले। कई बार बाबा ने मुरली में कह भी दिया, बच्चे ये भोग लगाना खेल पाल है। क्यों कहा? मिसयूज किया इसका, अभी भी कर रहे हैं। बहुत सारी अपोजिट पार्टीज हो गई है ब्रह्मा कुमारीज के। कुछ अल्प बुद्धि लोग भोग लगाते हैं, नाटक करना शुरू कर देते कि हमें ही बाबा आ गया भोग लगाते हुए। आप सोचिए, बाबा उस रथ में आता है जो पिछले 7 जन्मों से पवित्र आत्मा है। अगर वो साधारण दिमाग में आके बैठ जाए तो टुकड़े ना हो जाए ब्रेन के। इतनी पावरफुल सत्ता है वो, हर एक उसे कोई ले नहीं सकता, झेल नहीं सकता उसको। और बाबा ने कहा कि मैं इसमें उसमें सब में आता हूं, नहीं। तो ऐसे डोंगियों से बचिए, बिल्कुल बचिए। कोई कहे कि मेरे में मम्मा आती है, मेरे में शिव आता है, महाशिव आता है, एक और नाम निकाला है अभी, वो कहते हैं हमें तो महाशिव आता है, ब्रह्मा कुमारी में केवल शिव आता है। सोचिए, शिव की भी कैटेगरीज बना दी है, पता नहीं कितने शिव बना दिए, ठीक है ना। तो अपना तीसरा नेत्र खोल कर रखिए, यथार्थ देखिए। तो ये जो मिसयूज करने लगे थे भगवान की भावनाओं से सीधा खिलवाड़, और इससे बड़ा सृष्टि पे महापाप नहीं हो सकता कोई। तो बाबा ने फिर कहा, नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा भोग, प्रसाद अपने पास रखो, ये खेलपाल बाबा को नहीं चाहिए, क्योंकि वो केवल भूखा भावनाओं का है, हम उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। केवल भूखा भावनाओं का है। अब ये भोग बाबा के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता, क्या कहते हो? पहुंचता है? जो भोग आप भगवान को अर्पित करते हो वो उस तक पहुंचता है या यूं ही रख के आ जाते हो? जी पहुंचता है। अगर उसमें भावना है तो 101% पहुंचता है। भावना नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। शुरू शुरू में जब बाबा व्यक्त हुए, संदेशियां भोग लगाती थी, तीनों ही टाइम लगाती थी और दो दो मिनट का मैसेज भी लाती थी। एक बार एक संदेशी भोग लेकर के गई, बाबा ने थाली रिटर्न कर दी और कहा, बच्ची जो निमित्त आत्मा है उसको चखाओ और उसके बाद भोग की थाली लेकर आओ। स्वीकार नहीं किया बाबा ने भोग। तो वो थाली आई, जो निमित्त आत्मा थी उसने वो चखा, तो एक सब्जी में नमक नहीं था, अब ऐसा नहीं कि बाबा को कोई बीपी का प्रॉब्लम है कि वे उसको नमक या बिना नमक वाला चाहिए, ऐसा नहीं था। एक्चुअली बाबा ने ब्रह्मा भोजन की अहमियत बताई, उसकी ताकत बताई। दुख भंजन भोजन यदि संसार में कोई है तो ये प्रभु प्रसाद है। अगर मैं इसे बड़ी भावना से बनाऊं, लगाऊं और खाऊं तो पता नहीं कितने कष्टों को, कितनी बुरी आदतों को, कितने बुरे संस्कारों को ये अंदर जाके खत्म कर देता है। यही संसार का दुख भंजन भोजन है। बाबा कहते थे जिस भोजन में डायरेक्ट भगवान की शक्ति और दृष्टि पड़ती हो उसे तुम कितने रिस्पेक्ट से खाओ। अब उस सब्जी में नमक नहीं है, खाने वाले 400 हैं, टेस्टलेस है। कोई उसे देख के नाक सिकुड़ेगा, कोई फेंकेगा, कोई झूठी करेगा, कोई खाएगा, तिरस्कार होगा, अपमान होगा ब्रह्मा भोजन का। परंतु बाबा कहते थे ब्रह्मा भोजन के एक एक दाने की इतनी कीमत है कि इसका एक दाना भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की थाली भी धो धो कर पी जानी चाहिए, इतनी इसकी वैल्यू होती है। बस शर्ते यदि मैं भावनाओं से स्वीकार करूं तो। और ये मैंने खुद प्रैक्टिकल में देखा है कि कितनों के डिप्रेशन, बीमारियां भोग का जल पीकर और भोग खाकर ठीक हो गए। पीछे हम भीड़ में थे, वहां एक माता का अनुभव सुना है कि उसकी बेटी, यंग बेटी शरीर छोड़ गई, वो डिप्रेशन में आ गई, पागलों जैसी हो गई। पहले दिन जब वो सेंटर पे आई तो उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी, ना वो सुनने को तैयार ना सुनाने को, बिल्कुल पागलों जैसी स्थिति, कंट्रोल में ही नहीं आई। गुरुवार का दिन था, बहन जी ने उसको हल्का सा जल दिया, थोड़ा सा उसके मुंह में जबरदस्ती भोग डाला, आने लगी। बहन जी उसके लिए डेली जल बनाती, भोग लगाती, थोड़ा सा कुछ भोग भी फल फ्रूट ड्राई फ्रूट का रखकर उसको खिलाना शुरू कर दिया। और कुछ नहीं किया क्योंकि वो सुनने की हालत में नहीं थी, कुछ नहीं सुन सकती थी। और आप मानेंगे एक महीने के अंदर अंदर जो आधी पागल हो चुकी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब हम गए वहां पर तो वो माताओं की लीडर थी जिनसे वो सेवा करा रही थी। केवल भोग और भोग का जल पीकर ये चमत्कार हुआ। दुख भंजन भोजन है ये, अगर हम इसे भावनाओं से स्वीकार करें तो। इससे बड़ी ताकत और किसी चीज में है ही नहीं। इसीलिए बाबा ने ये मिस्टेक ठीक कराई और उस दिन से ये नियम निकाला कि जो निमित्त आत्मा है, भंडारी है, वो भोजन को चखेगा और फिर बाबा को भेजेगा। लेकिन एक आत्मा जो निमित्त है, सभी चखेंगे तो वो झूठा हो जाएगा, एक आत्मा खाली। ऐसे ही दूसरी बार एक संदेशी भोग लेकर गई, बाबा ने डब्बी खोली तो उसमें इतना लंबा वो सांप दिखाई दिया। वो बहन तो घबरा गई, मैं तो सब्जी भाजी ये सब लेकर के आई थी, ये सांप कहां से आ गया डब्बी में। तो बाबा मुस्कुराए, कहा बच्ची जाके देखो मिस्टेक कहां हुई है। अब उसने फटाफट आकर के डब्बियां खोली, देखा चावल की डब्बी में इतना बड़ा बाल पड़ा था। भावना किस तरह मैं परोस रही हूं बाबा को। वो चावल का भूखा है क्या, है क्या? वो चाहे तो एक सेकंड में पूरी वसुंधरा पे हीरे की बरसात करता कर सकता है, पूरी वसुंधरा को चावल से भर सकता है वो चाहे तो। उसका भूखा नहीं है, किसका भूखा है वो? तो मेरा परोसने का भी ढंग कैसा हो बाबा के लिए। पीछे मुझे याद है एक बार, कई साल हो गए, नीचे डायमंड होल बना बना था, बाबा ने सारे इंडिया के कुमार बुलाए, जो पुराने कुमार होंगे शायद उनको याद होगा, सारे इंडिया के कुमार बाबा से मिलने गए। और बात बात में बाबा ने कहा कुमार बच्चे भी बाबा को बहुत प्यार करते हैं, बाबा को भोग लगा करके खाते हैं। जो घरों से बाहर रहते हैं, बिजनेस नौकरी आदि करते हैं, वो खुद ही बनाते हैं, खुद बनाते हैं तो बाबा को भोग भी लगाते हैं। तो बाबा ने कहा कुछ कुमार भाई कैसे भोग लगाते, तरीका बताया। अब देखिए, एक तो कुमार बिजी बहुत होते हैं, दूसरा भोजन उनका सब्जेक्ट नहीं है, मजबूरी से बनाना पड़ रहा है, तो मजबूरी से वो क्या बनाते, खिचड़ी पुलाव, ज्यादा से ज्यादा दाल चावल, रोटी चपाती के चक्कर में वो नहीं पड़ते हैं। दूसरा जल्दीबाजी बहुत होती है उनको, तो जल्दीबाजी कुकर में खिचड़ी पुलाव रखेंगे, सीटी बजाएंगे, फटाफट सीटी को निकालेंगे, कुकर का ढक्कन खोलेंगे और कुकर ही बाबा के सामने रख देंगे, इसी में खा लें। बिजी बहुत हूं, जल्दी जाना है। तो बाबा भी ऐसे ही हंसे जैसे आप सब हंसे। उन भोले भाले बच्चों से पूछो कि तुम कितने भी बिजी क्यों ना हो, जल्दी में क्यों ना हो, तुम कुकर में खा सकते हो क्या? प्लेट में निकालोगे कि नहीं? जब बच्चा नहीं खा सकता तो बाप कैसे खाएगा? तो बात काम उतारने की नहीं है, एक रीति रस्म है वो निभाने की नहीं है, बात है भावनाओं की। यहां सवाल है भावनाओं का, भावनाओं का होना जरूरी है, रीति रस्म निभाने नहीं। कि एक रीति रस्म बनी है निभानी है तो निभानी है, उसमें भावना का नाम नहीं है तो वो भोग बाबा को पसंद नहीं, ना उसमें ताकत है, फिर ताकत भी नहीं है उसमें। भावना का होना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे घर में दो मेहमान आते हैं तो हम अपने एक कोने में डाइनिंग टेबल रखते हैं, भले खुद जमीन पर खाएंगे लेकिन एक डाइनिंग टेबल जरूर रखेंगे। और मोस्टली देखा जाता है कि वो जमीन पे बैठ के बड़े प्यार से खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे नहीं खाते हैं। अपना आप टूटी फूटी प्लेट में खा लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा सा डिनर सेट जरूर होगा उनके घर में। किसके लिए होता है वो? मेहमानों के लिए। अपने आप जमीन पर खा रहे हैं, टूटी फूटी प्लेट में खा रहे हैं, पर मेहमानों के लिए अच्छा इंतजाम करके रखा है। अब सोचिए यदि साधारण मेहमानों के लिए मैं इतना कर सकती हूं तो इस सृष्टि का जो सबसे बड़ा मेहमान बनकर मेरे घर में आया है उसके लिए मैं क्या नहीं कर सकती? कर सकती हूं, करना चाहिए या नहीं, या उसका काम उतार दो बस यूं ही? काम उतारने वाली बात नहीं, उसके लिए भी इत्मीनान से मैं बड़े अच्छे ढंग से भोग लगाऊं। अगर एक फूल भी मैं भोग की थाली पर रखूं तो ऊपर वाला विवश हो जाए उस फूल में से भी भावना लेने के लिए। इस फूल में भी भावना भरी है, काम नहीं उतारना, वो भूखा है। और मेरी ओर से मेरा भगवान एक दिन भी भूखा नहीं रहना चाहिए, ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। मैं उसे भूखा ना रखूं, वो मुझे कभी भी भूखा नहीं सोने देगा। 84 जन्म का वादा है, तुम उसे भूखा ना रखो वो तुम्हें भूखा नहीं रखेगा, तुम उसे आनंदित कर दो वो तुम्हें आनंदित कर देगा। जो दोगे वही मिलेगा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, प्रकृति का नियम है ये, ये उस विधाता का विधान है, जो दोगे वही मिलेगा। तुम काम उतारोगे वो भी काम उतारना शुरू कर देगा। इसीलिए भावनाओं का होना मस्ट कंपल्सरी। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पत दशा को बड़ा ऊंचा माना गया है। बाबा भी हर दूसरे तीसरे दिन मुरली में कहता है, बच्चे अब तुम्हारे सर पर कौन सी दशा बैठ रही है और ये हमें कहां लेकर जाएगी? ये दशा हमें सीधा स्वर्ग में प्रवेश कराएगी, जहां सुख शांति आनंद प्रेम सब कुछ होगा, भरपूरता होगी। तो जिसका बृहस्पत ग्रह अच्छा होता है उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि होती है। दुनिया में कहते हैं बृहस्पत वीक है ना, गुरुवार का फास्ट कर लेना, पीला कपड़ा पहन लेना, है ना, ये पूजा कर लेना, ये खाना ये नहीं खाना, उससे रिजल्ट मिलेंगे अल्पकालीन, एक जन्म के, एक जन्म में भी दो तीन साल के, दो तीन महीने के, सदाकालीन रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर सदाकालीन गुरु को अपने फेवर में करना है, बृहस्पत दशा को उच्च क्वालिटी का सदा सदा के लिए बनाना है अपनी कुंडली में, तो यहां परम सदगुरु को राजी करना पड़ेगा, तब गुरु ग्रह मेरे फेवर में आएगा, तब ये बृहस्पत दशा मेरे सर पर सदा सदा के लिए बैठ जाएगी। और देखिए दिन भी कितना अच्छा है, गुरु को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति, इसका मीनिंग क्या है? संस्कृत शब्द है ये, वृक्ष प्लस पति बनता है बृहस्पति, वृक्ष प्लस पति। आपके घर में एक पौधा है, उसको देखा कि वो सूख रहा है, मुरझा रहा है, तो क्या आपके मन में संकल्प आएगा? जैसे उसे मुरझाया हुआ देखेंगे तो क्या संकल्प आएगा आपके मन में? पानी डालें। आपने मुरझाए हुए पत्ते फूल कलियां ये सब देखी थी, लेकिन पानी किसे दे रही है? पत्ते फूल कलियों को पानी पिला रही है, कहीं और दे रही है? मुरझाए हुए तो पत्ते फूल कलियां हैं, जड़े तो मुरझाई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी पानी कहां दे रही है हम? जड़ों को। आपने एक चीज और नोट की, जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो हमारी आंखों के सामने वो और नीचे जाता है ना, हमारे ही सामने और नीचे जाता है, और वृक्ष के अस्तित्व को टच होकर के ऑटोमेटिकली कहां तक पहुंचता है, चोटी तक। नेक्स्ट डे जब देखोगे तो वृक्ष कैसा दिखाई देगा, हरा भरा। जल कहां डाला, जड़ से और नीचे गया, उसके अस्तित्व को रूट को टच हुआ, ऑटोमेटिकली कहां पहुंच गया, चोटी तक। बृहस्पत क्या है, ये बृहस्पत ये पूरी सृष्टि मनुष्य आत्माओं की एक वृक्ष की तरह है, जिसको बाबा ने नाम दिया है कल्प वृक्ष। और इसका बीज कौन है जी, इसका बीज है सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा। जब हम अपनी भावनाओं का जल उसको प्रदान करते हैं तो वो जल केवल बीज तक सीमित नहीं रहता, बीज से जड़ों से होता हुआ टहनियों में, टहनों में, फूल और पत्तियों में, सब में फैलता है, और यहां से मेरे पुण्य उदय होने शुरू होते हैं, यहां से मेरे सुंदर कर्म की शुरुआत होती है, जिसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक कर्म करते हो भगवान के निमित्त और रिटर्न कितना मिलता है, पदम गुणा, वो इस तरह मिलता है। मैंने केवल बीज के लिए किया, लेकिन जो बीज के लिए किया वो पूरे वृक्ष में फैल गया, और जब वो रिटर्न होकर के मेरे पास आया तो एक का कितना बन गया होता है, एक का कितना बन गया होता है, पदम गुना। और यहां से मेरे पुण्य उदय होने शुरू होते हैं, पुण्य राइज होने शुरू होते हैं, और भोगनाएं डाउन होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं बृहस्पत दशा जिसकी कुंडली में बहुत अच्छी हो, गज केसरी योग बन जाते हैं। गज जिसके दरवाजे के सामने हाथी बंधे हो, केसरी शेर जिसके पास शेरों जैसी ताकत और शक्ति हो, और ये योग बनते हैं राजाओं के पास। यानी कि राजयोग, राजा बनने के योग, राजा जैसी जीवन जीने के योग बनते हैं उसके जीवन में। अगर यहां हम अपने गुरु को प्रसन्न कर लेते जो परम सद्गुरु है, और बृहस्पति के दिन भोग लगवा करके उसकी दशा को अपने फेवर में ले लेते हैं, तो 21 जन्म तो खुद भगवान ने बोला, लेकिन मैं कहती हूं पूरे 84 जन्म हमारी गज केसरी योग बनेंगे कुंडलियों में, बस शर्ते हमसे पाप कम हुए हो दो युगों में, तो गज केसरी योग के रिजल्ट दिखेंगे। अभी से हम अपने नक्षत्रों को चेंज कर सकते, हम नक्षत्रों के फेवर में नहीं है, हम उन्हें चेंज कर सकते अपने वाइब्रेशंस के द्वारा। हम में नेगेटिविटी है, वो हमारे नक्षत्र को नेगेटिव कर रही है, और बहुगुणा रूप में वो नेगेटिविटी आकर वैसी ही सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट कर रही है। हम यहां से योग की पॉजिटिव सकाश अगर नक्षत्रों को भेजते हैं तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव होने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, उनका प्रभाव हम पर नहीं, हमारा प्रभाव उन पर है। सतयुग में क्यों नहीं परेशान करते हैं, क्योंकि वहां आत्मा पॉजिटिव होती है, पुण्य होती है, पवित्र होती है, इसलिए कोई भी नक्षत्र वहां परेशान नहीं करता। राइट, जो दोगे वही मिलेगा। यहां हम जो दे रही है वही रिटर्न में हमें मिल रहा है। मैं गुस्सा बहुत करती हूं तो मेरा राहु भी फिर क्या करेगा मुझे, मेरा शनि भी ठिकाने लगा देगा मेरे को अच्छी तरह से, क्योंकि वो मेरी गुस्से की, जो क्रोध की वो ले रहा है, उसके रिटर्न में वो कहीं ना कहीं मुझे विघ्न दे रहा है, संकट दे रहा है, असफलता दे रहा है, मनमुटाव दे रहा है, उत्थान की जगह पतन कर रहा है। इसीलिए यहां से जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगी मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, केवल यहां से मुझे ठीक करना है अपने आप को। तो बृहस्पत दशा यदि मेरी कुंडली में सदा सदा के लिए हो जाए तो सोचने की बात है क्या, है क्या? बाबा कहते हैं अभी कौन सी दशा है, लेकिन जब हम कोई पाप कर लेते तो बाबा क्या कहते हैं, अभी कौन सी दशा बैठ गई, जो पाप करते उसके सर पे राहु की दशा बैठी है, यानी कि दुखदाई स्थितियां बन रही है। तो भोग लगाने से इमीडिएटली पुण्यों में वृद्धि कैसे होती है, देखिए जब हमारे मन में संकल्प आता है, कल मैंने कहा बाबा किसका है या पड़ोसी का, तो मेरों के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं, तो आज से एक दृढ़ संकल्प करके जाएंगे यहां से, बाबा मेरा है, भोग लगवाना मेरा फर्ज है, बहनों को कहने की आवश्यकता ना पड़े। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो पड़ोसी को कहना पड़ता है क्या कि इसको भोजन खिला देना, या मेरा खुद का फर्ज होता है उसको खिलाना है? इस सभा में कितने भाई बहने बैठे हैं अभी फिलहाल, लगभग कितने होंगे जी, कितने होंगे? 400 जी, 400, साढ़े 400, 500, 500 बैठे हैं। एक साल में कितने गुरुवार आते हैं? 52। 10 फेस्टिवल लगा लो बड़े बड़े, होली, दिवाली, मम्मा डे, बाबा डे, दादी डे, है ना, राखी, जन्माष्टमी, ऐसे हमारे 10 बड़े बड़े पूरे साल के फेस्टिवल, और 52 गुरुवार, कितने हो जाते हैं? 62। और बैठे कितने हैं यहाँ पे? 500। अगर हम 10 लोगों का भी एक ग्रुप बनाएं, तो एक बड़ा ब्रह्मा भोजन साल का, और एक गुरुवार को बड़ी इजीली बाबा को और बाबा के बच्चों को नहीं खिला सकते हम? सोचिए, यस या नो, खिला सकते हैं ना? और जिसमें हर तरीके से मेरा पुण्य होने वाला है, मेरी भोगनाएं जाने वाली है, मेरा कष्ट जाने वाला है, कैसे जाएगा वो मैं अभी बताती हूं आपको। बस शर्ते मेरी भावनाओं में स्वार्थ मिक्स ना हो, स्वार्थ से नहीं, भावनाओं से काम चलेगा। मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज मेरे दिमाग में हो। जब मैं यह संकल्प करती हूं कि आज का गुरुवार मुझे बाबा के साथ सेलिब्रेट करना है, आज मुझे अपनी तकदीर को बढ़ाना है, अपनी किस्मत को चमकाना है, पर ऐसा नहीं कि लो बहन जी पकड़ो पैसा कल भोग लगा देना। बहन जी ने कहा भैया आ तो जाना सुबह भोग में। नहीं नहीं बहन जी, कल तो बहुत बिजी हूं, नहीं आ सकता। अच्छा, फिर बहन जी ने दोपहर को फोन किया, भैया भोग खाने तो आ जाओ। देखूंगा बहन जी, टाइम मिला तो आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं, लग गया भोग। तो जब बहन जी भोग लेके बाबा के पास जाएगी तो बाबा भी कहेगा ठीक है बच्ची, बाबा बच्चे को याद कर दे देना। जैसी जिसकी भावना। अब एक माता जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उसने 10-10 पैसा, एक एक रुपया 10 दिन से 15 दिन से बचाया, पैदल चल के बाजार में गई, कुछ अच्छे अच्छे फ्रूट्स ढूंढ के लाई, अपने हाथों से फूल की माला बना करके लेके आई, बूढ़े हाथ कांपते हुए बहन जी के पास आके बोलती है, बहन जी मेरे ये तिल फूल बाबा की थाली में रख लेना, बड़ी श्रद्धा और बड़ी भावना से लेकर आई हूं, पेट पे पट्टी बांध कर बचा बचा कर तब लेकर आई हूं। बहन जी ने बड़े रिस्पेक्ट से उसके फ्रूट पकड़े, थाली में रख दिए, बाबा के पास थाली जाती है। अब देखिए क्या होता है, भगवान भी मुस्कुराते, अपने सिंहासन को छोड़ते हैं, 10 कदम आगे बढ़ते हैं, दोनों हाथ फैलाकर वो सर झुकाकर थाली लेते हैं, क्योंकि वो केवल भूखा भावनाओं का है, वो किसी के पकवानों का भूखा नहीं है। इस तरह से हम भगवान को राजी कर सकते हैं, बांध सकते हैं। स्वार्थ मिक्स ना हो, काम उतारने वाली बात ना हो, दिल से हो उसके लिए जो कुछ भी हो, दिल से। तो एक तो जब संकल्प करें हम भावनाओं से करें। देखिए, अगर मैंने संकल्प किया मुझे मेरे बाबा को भोग लगाना है, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? जिसके केवल नाम को जपने मात्र से विघ्न नष्ट हो जाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र को यह कहा गया है कि महामृत्युंजय मंत्र का यदि विधिवत जाप कर लिया जाए तो आई हुई मृत्यु को टालने की ताकत रखता ही है। और महामृत्युंजय मंत्र और कुछ नहीं है, भगवान का एक नाम है, शिव का एक नाम है, जिसको केवल जपने से मृत्यु को भगाया जा सकता है, विघ्नों को, संकटों को, आपदाओं को टाला जा सकता है, जिसके नाम में इतनी ताकत है। खाली अगर उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, जिसे हम कहते हैं कृपा दृष्टि, अगर उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए तो किसी की क्या ताकत है कोई मेरी बिगाड़ सके दुनिया में, है ताकत? तो जैसे ही मेरे दिल में भगवान के प्रति भावना पैदा होती है, मैं उसकी दृष्टि की पात्र बन जाती हूं, उसकी दृष्टि मुझे मिलने लगती है, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ने लगती है। और जिसको भगवान की दृष्टि मिलने लगे, उसकी तो किस्मत वैसे ही बन जाती है, उसके तो विघ्न ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। वहां विघन दुख रहते ही नहीं है। इस तरह पुण्य राइस होते हैं। दूसरी बात देखिए, जो बाबा का भोग बनता है ये कहां बनाते हैं हम लोग? स्थान का बड़ा भारी महत्व होता है। स्थान जो मैंने अभी पैसा भी चार्ज करा वो इसी स्थान के लिए कराया। इसी स्थान का बड़ा भारी महत्व है। आने वाले समय में पता चलेगा कि इन स्थानों का कितना बड़ा भारी महत्व है हम लोगों के लिए। जब ये आपका सेंटर है ना, इतने बड़े सेंटर में जब हजारों लोग शरण लेंगे, और यही सुरक्षित स्थान होगा विनाश काल में। इन स्थानों का महत्व है। आज कलयुग में आप देख लीजिए, किसी का घर, कहीं भी कोई भी स्थान देख लीजिए, केवल धार्मिक स्थानों को छोड़कर कहीं भी प्योरिटी नहीं है। इम्प्योरिटी का वाइब्रेशन 99% है पूरी दुनिया में, लेकिन ये कुछ धार्मिक स्थान और बाबा के घर, ये संपूर्ण पवित्र स्थान है। ये ऐसे स्थान है जहां सैकड़ों साधक बैठकर साधना करते हैं, जहां रोज भगवान के महावाक्यों को सुना और सुनाया जाता है। ये वो स्थान है जहां प्रभु मिलन होता है, जहां भटकते हुए राही आते और उन्हें मंजिल मिल जाती है। ये वो स्थान है जहां दुखों वाले लोग आते और सुखों को लेकर जाते हैं, जहां दुर्भाग्यशाली आते हैं और भाग्यशाली बन जाते हैं, जहां गरीब आते हैं और धनवान बन के जाते हैं। ये वो स्थान है जहां प्रभु मिलन होता है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन कराया जाता है। ये वो स्थान है। इन स्थानों का बड़ा भारी महत्व है। जहां बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, जहां इम्प्योरिटी का नाम निशान नहीं, ऐसे पवित्र स्थानों पर ये भगवान का भोग बनाया जाता है। पवित्र वातावरण में महासत्ता, परम पवित्र सत्ता के लिए भोग बनेगा तो स्थान कैसा होना चाहिए? स्वच्छ के साथ पवित्र होना चाहिए। ऐसे पवित्र धरनी पर बाबा का भोग बनता है। बनाते कौन है? मैं एक बात कहना चाहूंगी इस सभा में, कि जो अपने आप को महारथी समझते हैं, नियम धारणाओं में स्ट्रांग समझते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़े। बहुत बड़ा मौका है ये। जितना भोग लगाने का महत्व है, इतना ही बनाने का भी महत्व है। पर शर्त एक है कि नियम मर्यादाओं में स्ट्रांग। अगर नियम मर्यादाओं में ढीले हैं तो भोग से दूरी बनाकर रखिए, नहीं तो पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि ये परम पवित्र सत्ता के लिए भोग बन रहा है, इसमें जरा भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन यदि धारणाओं में स्ट्रांग है, नियमों पर चलते हैं, तो आप ये मौका चूकिए मत। सामने से ऑफर कीजिए, भोग बनाने में सेवा लीजिए। एक घंटे की सेवा है, प्रभु प्रेम से भोग बनाइए, सोए हुए भाग्य जाग जाएंगे। तो बनाता कौन है इस भोग को? मोस्टली बनाती है हमारी बहनें, भाई भी बनाते हैं, पर हर जगह मोस्टली हमारी बहनें बनाती, मेजोरिटी। वो बहनें बनाती हैं जिनके त्याग और तपस्या की कहानी भगवान की डायरी में सोने के अक्षरों में लिखी जाएगी। जो छोटी छोटी बाल उम्र में अपने सारे शौक इच्छाएं छोड़कर, अपनी दुनिया संबंधी संसार छोड़कर आ गई, और जिन्होंने केवल भगवान को अपना संसार बना लिया, जिन्होंने दुनिया के हर रंग छोड़ दिए, सफेद रंग से प्यार कर लिया, ऐसी पवित्र बहनें जो कामधेनु और अन्नपूर्णा के रूप में आज भी पूजी जा रही हैं, उनके हाथों से ये प्रभु प्रसाद बनता है। और जब ये प्रभु प्रसाद बनता है तो तीनों लोकों में इसकी खुशबू फैलती है, क्योंकि ये साधारण प्रसाद नहीं, ये प्रभु प्रेम में मगन होकर बनाया जा रहा है। देवताएं विचरण करते हैं और कहते काश काश ये प्रभु प्रसाद हमारे नसीब में होता। उनके नसीब में 56 प्रकार के व्यंजन होंगे, परंतु ये प्रभु प्रसाद पूरे 5000 साल में, पूरे कल्प में केवल 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 आपके नसीब में है, ये देवताओं के नसीब में भी नहीं है। ताली तो बजाओ। इतना सुंदर सौभाग्य मिला है ब्राह्मणों को। दूसरा, इस प्रसाद को खाते कौन है? अगर पंडितों के कहने पर के पांच ब्राह्मणों को जिमा दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। ब्राह्मणों को खिलाने का बड़ा ही रिवाज है। जब ये श्राद्ध चलते हैं ना श्राद्ध, तब तो पंडित ढूंढे से भी नहीं मिलते, पहले से ही इन्वाइटेड होते हैं। चार चार पांच पांच दस दस घरों में खा खा के तन जाते हैं वो। अगर साधारण ब्राह्मणों को खिलाने से ग्रहचारी हट सकती, पहली बात तो माफ कीजिएगा, ओपनली बात करती हूँ, आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं? सभी की बात नहीं कर रही मैं, पर फिर भी आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं? दुनियावी ब्राह्मण। पुणे के पास महाबलेश्वर है, वहां एक शहर पड़ता है वई। एक वैष्णव भाई ज्ञान में चला नया नया, उसने अपनी सारी स्टोरी बताई। बहन जी, मेरे पिताजी बड़े अच्छे कथावाचक हैं, कथा करते सत्यनारायण की और ये वो सब, काम धंधा ये है उनका, वैष्णव है। फिर उसने अपना एक धीरे से रहस्य बताया, हम वैष्णव जरूर हैं, पर अब ज्ञान में चल के पता चला वैष्णव किसको कहते हैं। हमारे घर में कोई दिन ऐसा नहीं जो सुबह अंडा ना बनता और शाम को नॉनवेज ना बनता हो। वैसे हम वैष्णव है और कथावाचक है, कथा करते हैं लोगों के घर में जाके। कश्मीर में गए, वहां कुछ ब्राह्मणों से मिले, तो वहां बताया कि कुछ ब्राह्मण यहां भी ऐसे हैं जो फुल नॉनवेज लेते हैं, और इतना ही नहीं शिवरात्रि को शिवलिंग पर भी नॉनवेज का भोग लगाते हैं। सोचिए कितने मैंने ऐसे ब्राह्मण देखे जिनके घर में तामसिकता प्रवेश कर गई है, व्यसन प्रवेश कर गए हैं। अगर ऐसे ब्राह्मणों को खिलाने से ग्रहचारी उतर सकती है तो आप कैसे ब्राह्मण हो ये बताइए। बस फर्क इतना है, वो कुख वंशावली हो और आप, तो आप कैसे हो? आप अपने आप को कैसा ब्राह्मण समझते हो ये बताइए। जो अपने आप को स्ट्रांग ब्राह्मण समझता है वो हाथ खड़ा कर दीजिए। जो कहता है कि हाँ मैं पक्का बीके हूं, वो हाथ खड़ा कर दे। अच्छा, अब एक कोई भी भाई जो हिंदी जानता हो स्वेच्छा से खड़ा हो जाओ, जो अपने को पक्का बीके समझता हो। यस, पक्के बीके हो, कुछ भी हो जाए। भाई जी, आप अपने गांव से बाहर कहीं दूर जंगल में फंसे हुए हो, तीन दिन हो गए आपके पेट को भोजन नहीं मिला है, भी नहीं दूर दूर तक, आपकी जेब में 5,000 रुपया पड़ा है पर अन्न नहीं मिल रहा खाने को, आपके सामर्थ्य जवाब दे रही है, घुटने आगे चल नहीं रहे हैं, थोड़ी दूर बड़ी मुश्किल से आप बढ़े आगे तो दूर से देखा कि ऑनियन, कांदा जिसे कहते हैं, उसके पकोड़े बन रहे हैं गरम गरम। तीन दिन से आप भूखे हो, सामने जो है केवल एक ही मात्र उपाय है, प्याज के पकोड़े, और जेब में 5,000 रुपये भी हैं। अब आप पूरी सभा को ये बताइए कि आप क्या करोगे?
मेरे को कोई काम के नहीं है।
आपके प्राण जा रही हैं? ताली तो बजाओ एक बार। भरत परिये पर धर्म, कैसा ब्राह्मण है ये? नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, प्राण चले जाए पर क्या नहीं खाएगा? फिर से एक बार ताली बजा दो। बैठ जाइए। जो नियमों पर चलने की ताकत नहीं रखते वो खाक युग परिवर्तन करेंगे, जिनमें नियमों पर चलने की ताकत नहीं है वो सत्य धर्म की स्थापना क्या करेंगे बताइए। सत्य धर्म वो स्थापित कर सकते हैं जो नियमों पर सिद्धांतों पर चलने की ताकत रखते हो। ऐसे ही ब्राह्मण नव युग निर्माण करेंगे, मर तो जाएंगे पर नियम नहीं छोड़ेंगे। इसी कहा गया धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए, तभी धर्म में बल आता है, तभी उस धर्म में बल आता है, वरना बलहीन धर्म है। अगर ऐसे ब्राह्मण मेरे सामने बैठे हैं, ये खा ले जिसे खुद शिव कहता है कि यही तो मेरी संतान है, जिसे ब्रह्मा भी बड़े गर्व से कहता है तुम ही तो मेरे बच्चे हो, और मां जगदम्बा सर उठा के कहती हो तुम ही तो मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, और साक्षात अगर विष्णु करा दे तो कहकर चला जाता है तत्त्वम, तत् त्वम कहकर चला जाता है अगर साक्षात्कार करा दे तो। अब आप सोचिए, आप इस दुनिया की कितनी ग्रेट सोल हो, कितनी महान सोल हो, जिसका कुंडबा, जिसका खानदान ही देवों का है, देवताओं का है, वो कितना महान होगा सोचिए। अगर यहां बाबा की एक पवित्र कुमारी खड़ी हो जाए तो सौ सौ ब्राह्मणों पे भारी पड़ जाती है। बाबा की एक पवित्र कुमारी, तो कुमारी अपने लिए ताली तो बजाओ। आपकी वैल्यू देखिए, एक तरफ एक कुमारी और एक तरफ सौ ब्राह्मण, बराबर है एक कुमारी सौ ब्राह्मणों के। सौ ब्राह्मण को खिला दो और बाबा की एक पवित्र कुमारी को खिला दो, बराबर फल मिलेगा। इससे भी बड़ी बात, यदि यहां बाबा का एक पवित्र कुमार मैदान में आ जाए तो 700-700 ब्राह्मणों को ले बैठता है एक बाबा का पवित्र कुमार। 700 ब्राह्मणों की वैल्यू एक तरफ है और एक बाबा के पवित्र कुमार की वैल्यू एक तरफ है। एक बाबा के पवित्र कुमार को खिला दो और 700 ब्राह्मणों का फल पालो, ये ताकत यहां रखते हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है, जो बाबा के पवित्र युगल हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है, जिसने सोच बदल दी है, जो बाबा के सौ पीस हैं, जो बाबा के उदाहरण है, बाबा की शान है। इस संसार की सबसे बड़ी चुनौती जिन युगलों ने स्वीकार की, जो चुनौती ऋषि मुनि भी स्वीकार नहीं कर पाए, वो भी ये कह चुके थे, घर ग्रस्त में रहकर अपने जीवन को पवित्र बनाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन ये चुनौती किसने स्वीकार की है? बाबा के युगलों ने स्वीकार की। एक ने नहीं, दस ने नहीं, पचास सौ ने नहीं, हजार ने नहीं, लाखों ने स्वीकार की है। लाखों बाबा के युगल आज पवित्र जीवन इसी घर ग्रस्त में रह करके जी रही है और उन ऋषि मुनियों को जवाब दे रही है कि जिस चुनौती से डरकर तुम हिमालय की तरफ चले गए, जंगलों में चले गए, उस चुनौती को हमने इसी कीचड़ में रहकर स्वीकार किया और कमल बनकर दिखाया। अगर ऐसे पवित्र युगल दो, केवल दो युगल अगर सामने आ जाएं, तो 1000 ऋषि मुनियों पे भारी पड़ जाते हैं ऐसे पवित्र युगल बाबा के। 1000 ऋषि मुनि को खिला दो और इन दो पवित्र युगलों को खिला दो, बराबर फल मिलता है। अगर उन पांच पंडितों को खिलाने से ग्रहचारी उतर सकती है, तो इन ब्राह्मण आत्माओं को खिलाने से ग्रहचारी नहीं उतरेगी क्या? पता चला हमारी क्या महानता है? पता चला विचारों में भी तामसिकता नहीं, जीवन में तो बहुत बड़ी बात है, यहां भी नहीं। ग्रहचारी रहेगी जब वो भोग खाएंगे और दिल से दुआ निकलेगी, तो किसी का दुर्भाग्य टिक सकेगा? फिर क्या होगा? दुर्भाग्य मैदान छोड़ के भागेगा और सुंदर सौभाग्य वहां पर आएगा। उनकी दुआएं काम करेगी, ऊपर वाले की दुआएं काम करेगी। इस प्रकार हमारे पुण्य राइस होते हैं, पुण्य राइस होते ही भोगनाएं डाउन होती हैं, भोगनाएं एकदम समाप्त हो जाती है, बशर्ते उसमें भावना हो। भावना कैसी हो? जैसे हमारे बाबा की भावना थी। एक बार एक बूढ़ी माता ने अपने घर में पपीते का पेड़ बोया और पहला ही संकल्प कर दिया कि इस पपीते का पहला फल बाबा को खिलाऊंगी। हमारे मन में भी ये संकल्प आता है क्या? सीजन का पहला फल जब हम मार्केट में देखते हैं, तो क्या दिल से मन में ये संकल्प आता है कि पहला फल ये मैं बाबा को स्वीकार कराऊं, या लेकर खुद शुरू हो जाते हैं? आता है ये संकल्प? आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आना चाहिए। और ये मेरा अपना पर्सनली अनुभव है, जो चीज मैं बाबा के लिए श्रद्धा से निकाल के रखती हूं, मेरे पास हर चीज खत्म हो सकती पर वो कभी नहीं खत्म होगी, बढ़ चढ़कर मेरे पास रहती है वो चीज, क्योंकि बाबा लेता नहीं, दिल देख कर फिर क्या करता है? देता है। लेता नहीं लेकिन दिल देख कर देता है वो। और ये खुद का एक्सपीरियंस है मेरा। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम भी अपना पूरे हफ्ते का पैसा बचाते थे। एक तो ज्ञान सरोवर बन रहा था और बड़ी दादी ने कहा था कि सबके एक एक रुपया इसमें जरूर पड़ना चाहिए, कम से कम बाबा के बच्चों से ही ज्ञान सरोवर बनेगा, ठीक है ना, एक एक रुपये से बनेगा, जो जितना डाल सके वो डाल सके यथाशक्ति, वरना एक रुपया तो रिक्शा चलाने वाला भी डालेगा। और एक एक रुपया सब डालते थे, ज्ञान सरोवर के एक नाम की भंडारी थी जिसमें सब डालते थे, हमने भी उसमें डालना शुरू किया, लेकिन फादर से चोरी। एक बार फादर को डालते हुए देखा तो फादर को बोला हम भी तो डालेंगे, आपने तो भाग्य बना लिया अपना। तो हमारे फादर ने जवाब दिया कि मैं घर का बड़ा हूं, मुखिया हूं, तो मैं पूरे परिवार का हिस्सा डालता हूं, केवल अपना नहीं डालता, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होता है, सारे परिवार का हिस्सा मैं इसमें डालता हूं। लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैं और एक हमारी सखी है जो अभी सूरत में रहती है, साधना भवन है वहां पर, हम दोनों ने प्लानिंग की है कि कॉलेज में पढ़ते थे कि हम कॉलेज रिक्शा से जाते हैं, आज से रिक्शा बंद, पैदल जाएंगे पैदल आएंगे, घर पे झूठ बोला, जल्दी जाएंगे देर से आएंगे, हमारा एक्स्ट्रा पीरियड चलेगा, कोर्स रह रहा है, स्टडी पूरी नहीं हुई है, उसके लिए जाना पड़ेगा। दो तीन महीने तक जाते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दो तीन महीने के बाद हमारे फादर को पता पड़ गया कि ये रिक्शा का पैसा तो रोज लेती है पर पैदल जाती है इतनी ठंड में। एक दिन उन्होंने पूछा हमसे कि हम तुम्हें रोज पैसा देते हैं रिक्शा का, लेकिन तुम पैदल क्यों जाती हो, पैसा का क्या करती हो? तो हमने सोचा अब तो इनको पता चल गया, सच बता दिया हमने कि देखो जिस दिन आपने पैसा डाला था ना भंडारी में, उस दिन हमें भी लगा था हम तो कन्याएं हैं, हमारे पास तो होता नहीं पैसा, तो हम अपने लिए पैसा कहां से लाएं, इसलिए हमने अपने हक का बचाया, हम पैदल गए पैदल आए और वो पैसा बचा करके हमने भंडारी में डाला। तो उनकी आंख में आंसू आ गए ये सुन करके। और मेरा पता क्या फायदा हुआ, उस समय मुझे 15 रुपए मिला करते थे, ये बात सुनकर हमारे फादर ने मुझे 30 रुपए देना शुरू कर दिए। देखिए बाबा को देने से क्या हो गया, डबल हुआ कि नहीं, ऐसे डबल होता है, ऐसे डबल होता है, ये खुद का एक्सपीरियंस है। हमने वो देखे हैं जो बिल्कुल रोडपति थे, एक माता ने शाम का भोजन छोड़कर यज्ञ में दिया, बिग रिलाइफ से यज्ञ गुजर रहा था, माता मजदूरी मेहनत करती थी, 3 बच्चे थे, रोज के उसने 75 पैसे बचाए, और कैसे बचाए, जो उसके शाम के भोजन में लगते थे वो बचाए। शाम का भोजन कितने साल तक नहीं खाया, पेट पर पट्टी बांध कर। अब सोचिए उसे अगले दिन 10 घंटे मजदूरी करनी है तो भी उसने शाम का भोजन नहीं खाया, पेट पर पट्टी बांध कर वो बाबा को देती गई देती गई देती गई। आज भी वो माता है पर राज माता से कम नहीं है, 2-2 करोड़ की तो गाड़ी है उसके पास, किसी का रखता नहीं है भगवान, एक बार दिल देखता है बस। और फिर जब वो भरता है ना तो ऐसे भरता है कि संभाले से संभलता नहीं है, फिर वो ऐसे रिटर्न करता है, दोगे तो आएगा, बस शर्ते उसमें स्वार्थ ना हो, केवल 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 क्या हो, भावनाएं हो, शुभ भावनाएं, फिर देखिए बरकत कैसे होती है। एक हाथ दो उधर से लो, और ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो धन हम पुण्य के कार्य में लगाते हैं। मान लीजिए मेरी सामर्थ्य 2 रुपये है, मैंने 2 रुपये पुण्यों के कार्य में लगाए, वो 2 रुपये में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी, एक ऐसा अट्रैक्शन बनेगा कि वो 2 रुपये 2000 को खींच के लाएगा और उसी जेब में डालेगा जिस जेब से 2 रुपये निकले। आजमा के देखिए आप, 2 रुपये लगाए उस जेब से 2 रुपये निकले, पुण्य के कार्यों में लगे, पॉजिटिव एनर्जी भरी, अट्रैक्शन पावर बढ़ी और वो पुण्य वाला धन और धन को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और 2 की बजाय 200 2000 आपकी जेब में डालेगा वापस। ये भी सिद्धांत है। सिद्धांत है ये। तो भावना ऐसी हो जैसी उस माता की थी, घर में पेड़ बोया पपीते का और संकल्प किया कि पहला फल बाबा को खिलाएंगे। अब हमने भी ये संकल्प किया था, हम बुधवार को ना, जब तक ज्ञान सरो की भंडारी नहीं थी, डेली बुधवार को जाते थे, चुन चुन के शहर के सबसे अच्छे फ्रूट खरीद के लाते थे और बाबा की थाली में रखते थे। आज हालात ये है, हमारे पास इतने फल आते हैं, कमरा भरा पड़ा रहता है फलों से, दोनों हाथों से खूब बांटते खूब बांटते खूब बांटते फिर भी खत्म नहीं होते, थक गए फलों से हम, इतनी बरकत होती है, सोचा भी नहीं था इतने फल। और ऐसे देश विदेश से फल आते जिनके हम नाम भी नहीं जानते, टेस्ट भी नहीं जानते, ये कहते है क्या, पूरे विश्व के फल हमारे पास होते हैं। इतना सा फल बाबा को दिया और रिटर्न में क्या कर दिया उसने, घर भर दिया, रियली घर भर दिया। अभी भी इतने छोड़ के आए, सबको बोल के बांट दो, दे दो सबको। अब वो जो लेते हैं ना, बांटते जिनको, वो भी थक गए, कहते बहन जी पहले ही पड़े हैं, अभी तुम कितने खाए आखिर बताओ। इतने से फल दिए और भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है, कहीं एंड होने का नाम ही नहीं है। ऐसे बरकत होती है, ऐसे बरकत होती है। अब वो पेड़ बड़ा होने लगा, फल आया, जब फल आया तो माता जी का तो सपना पूरा हो गया कि इसको तो मैं बाबा को खिलाऊंगी। और फल भी पता है कितना बड़ा, जो फुल साइज होता है पपीते का, दो ढाई किलो, दो ढाई किलो का पपीता, इतना मोटा, अखबार में लपेटा और माता जी पहुंच गई आबू पपीता लेकर के, गेट पर ही मिल गए बाबा उसको खड़े हुए। अब माता जी भी बूढ़ी थी राजस्थानी, बाबा आपके लिए ये पपीता लेकर आई हूं, बड़ी श्रद्धा से लेकर आई हूं, जिस दिन ये पेड़ बोया था ना उसी दिन सोच लिया था इसका फल मैं अपने बाबा को अपने हाथों से खिलाऊंगी, आप इसे स्वीकार करो बाबा। बाबा उसकी भावना देखता रह गया, इतनी दूर से केवल पपीता लेकर आई है। बाबा की आंखें नम हो गई और बाबा ने कहा चलो बच्ची, बाबा के रूम में चलो और बड़े प्यार से बाबा को काट करके खिलाओ, अपने हाथ से खिलाओ बाबा को। चाकू थाली आ गया, बाबा के कमरे में दोनों बैठे। जब भाग्य की रेखा बदली तो तुम थे और हम थे, उधर भाग्य बदल रहा था, वही सीन था जैसे शबरी ने बेर राम को खिलाए, जैसे श्री कृष्ण ने रोटी विदुर के घर खाई जमीन पर बैठकर, वही सीन था। माता उस पपीते को काटती जाती, बाबा को खिलाती और बाबा इतना आनंदित, वाह बच्ची वाह, क्या पपीता है, वाह बच्ची वाह। बाबा को बहुत आनंद आ गया, मजा आ गया, वाह 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 करते हुए पूरा पपीता खा गए। लास्ट में इतना सा बचा जो लास्ट वाला पीस था, तो माता ने कहा बाबा ये मुझे खिला दो। बात पपीते की नहीं थी, बात थी बाबा के हाथ से खाने की। बाबा ने कहा बच्ची ये तो तुम बाबा के लिए लाई हो ना, ये हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। बाबा थोड़ा सा, लास्ट ही तो है, थोड़ा सा खिला दो। तो बाबा के हाथ से खाने की इच्छा थी, इतना विवश किया माता ने बाबा को कि बाबा खिलाना नहीं चाहता था उसको, बिल्कुल खिलाना नहीं चाहता था, लेकिन वो बाबा से इतनी जिद करने लगी कि बाबा को खिलाना पड़ा। और पता क्या हुआ फिर, जैसे ही माता के मुंह में पपीता रखा, इतना बड़ा, माता ने ऐसा टेढ़ा मुंह किया, उसे हाथ में निकाल लिया और बड़ा गंदा सा मुंह बनाया। पपीता महाकड़वा था, बहुत कड़वा, बिल्कुल कड़वा पपीता था वो, और बाबा ढाई किलो खा गया, चेहरे पे शिकन नहीं, वाह 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 करता हुआ खा गया। फूका है वो पपीते का नहीं, कैसे खा गया वो, भावनाओं से खा गया। अब वो माता तो रोने लगी, बाबा ये मैंने क्या कर दिया, मेरे हाथों से ही क्या हो गया, इतना कड़वा पपीता, इतना सा मेरे से नहीं खाया गया, आपने ढाई किलो खा लिया, कैसे, चेहरे पे शिकन भी नहीं, मुस्कुराते हुए झूमते हुए वाह वाह करते हुए खा गए। कैसे कैसे खा गए आप? बच्चे की तरह रोने लगी, जो छोटे बच्चे रोते हैं ना, ऐसे रोने लगे। बाबा ने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछे, उसका चेहरा ऐसे पकड़ा और बड़े प्यार से कहा, बच्ची पपीता कौन खा रहा था, किसने पपीता खाया? बाबा तो तुम्हारी मिश्री से भी मीठी भावनाओं का स्वाद ले लेकर आनंदित हो रहा था। तुम्हारी जो भावनाएं थी ना, वो तो मिश्री से भी मीठी थी, उस मिश्री से मीठी भावनाओं ने पपीते की कड़वाहट को ढक दिया। वो कड़वाहट पता ही नहीं चली उसको। देखिए कितना भूखा है वो मेरी भावनाओं का, और कितना सम्मान करता है वो मेरी भावनाओं का। कभी भी ठेस नहीं लगाता हमारी भावनाओं को। एक शिव भक्त जो पानी भी शिव को अर्पित करके पीता है, पानी भी अर्पित करके पीता है शिव को। हम कितनी बार पानी पीते हैं दिन में, बोलिए? 5-6-10 बार पीते हैं ना। सच्ची बताइए कितनी बार बाबा याद आता है पानी पीते हुए? आता है क्या? सामने गिलास और गड़गड़ गड़गड़ गड़ अंदर आता है बाबा याद? लेकिन आप एक भक्त को देखिए, वो जल भी शिव को अर्पित करके फिर पीता है। कैसा भक्त होगा सोचिए। बस उसका एक ही संकल्प है, वो शिव के सामने खड़ा हो जाता है शिवलिंग के, और एक ही संकल्प करता है, हे शिव मेरे घर में कोई संतान नहीं है, एक पुत्र रतन तेरी कृपा से हो जाए तो बड़ा अच्छी बात है। एक ही संकल्प है उसका, जीवन का पहला और अंतिम संकल्प शिव के सामने रखा है। उस भक्त की भक्ति से, उसकी भावना से इतना प्रभावित होता है ऊपर वाला कि उसके घर ऐसी आत्मा को भेजता है। जब वो आत्मा चलती है तो हजारों कदम रुक जाते थे, जहां वो खड़ी हो जाती थी वहां खुशियों की बहार आ जाती थी। अगर वो मुस्कुरा दे तो हजारों चेहरों की उदासी हर लेती थी। जो शिव की शान थी, जो ब्राह्मण परिवार की जान थी, ऐसी हमारी दादी प्रकाशमणि उनके घर में पुत्र रतन बन के जन्मे। सोचिए अष्ट रत्नों में एक, जिनकी दृष्टि पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे लोग, कैसे माता पिता होंगे वो जिनकी गोद में वो खेल रही है बच्चा बन करके। अगर भक्त की सुनवाई हो गई तो बच्चों की नहीं होगी क्या? होगी या नहीं होगी? लेकिन किस आधार पर होगी? भावना के आधार पर होगी। हमारी दादी जानकी जो अब 101 साल की हो गई है, कुछ साल पहले बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कुछ भी हो सकता है, क्रिटिकल कंडीशन है। हमारी बड़ी दादी ने सभी जोन इंचार्ज को बुला लिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अहमदाबाद में एडमिट थी, बहुत ही खराब तबीयत थी। दादी ने ऐसे में बहन से कहा, मैं यहां भोग लगा सकती हूं, उनकी बड़ी भावना है भोग में, तो कहा लगा सकते हो, तो इंतजाम करो। थोड़ी देर में एक थाल आ गया भोग का बन करके। ऐसी कंडीशन में जब डॉक्टर ने कह दिया कुछ भी हो सकता है, दादी ने जमीन पर बैठकर आधा घंटा बाबा को भोग लगाया और 7 वर्ष आयु पाया। आज वो 101 साल की हो गई, बिल्कुल ठीक है, हमारे सामने है। पीछे हम चेन्नई गए, वहां एक मुक्तोमणि बहन है, उसने कहा हम बाबा का घर बना रहे थे, बनाते बनाते रुक गया, पैसा खत्म हो गया। हमने किसी से नहीं मांगा, बोला ही नहीं कुछ। अमृत वेले उठते, भोग बनाते या फल फ्रूट दूध का, नहा धोकर बाबा को अमृत वेले भोग लगाते और संकल्प देते, बाबा तेरा घर है, तेरा सेवा स्थान है, तेरे लिए बन रहा, तेरी सेवा के लिए बन रहा, तू बना, जैसे भी बना, कैसे भी बना तू बना। और आज चेन्नई का सबसे सुपर सेंटर है, कई करोड़ लग करके वो सेंटर बना है। बहन को ये पता नहीं कैसे बन गया, कहां से बन गया, उसे कुछ पता नहीं। और ऐसे पूरे भारत में हम ऐसे कई सेंटर, कम से कम 20 सेंटर को जानते हैं, जिन्होंने केवल भोग लगा लगा करके अपना सेंटर बना लिया, उन्हें पता ही नहीं कहां से कब कैसे बन गया, बन गया बस और बहुत अच्छा बन गया। जिनके कारोबार डूब रहे थे, बिजनेस डूब रहे थे, उन्होंने श्रद्धा से बाबा को भोग लगाया, मन में संकल्प किया हमारा ये कारोबार हमारा बिजनेस ठीक हो जाए तो हम इतना हिस्सा बाबा को अवश्य देंगे। आज उनके देश विदेश में बिजनेस फैल गई है, इतने बड़े वो अरबों खरबोंपति बन गए हैं। सीधी सी बात है, खुला दिल करो दो तो आएगा, रख दो तो ठहर जाएगा, जितना बहेगा उतना नया आता जाएगा, और यदि रख दिया तो सड़ जाएगा। आया किसी के काम में? 20-20 करोड़ गंगा जी में फेंका है लोग जाके, बोरे के बोरे रेलवे स्टेशन पे मिल रही है, जला दिए नालों में फेंक दिए, रखा हुआ काम में आया। इसीलिए बाबा के महावाक्य दुनिया में कोई नहीं काट सकता, बच्चे किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए सफल उसी की होए जो धैर्य अर्थ लगाए। लास्ट में कहानी सुनाकर खत्म करूंगी और एक बात कहना चाहूंगी कि जो पक्के बाबा के बच्चे हैं, जिनके किचन में नॉनवेज नहीं बनता, वो 24 घंटे में एक बार बाबा को भोग जरूर लगाएं अपने घर में, बड़ी श्रद्धा के साथ लगाएं। देखिए उस घर में बरकत तो होगी, जिस घर में रोज भगवान खाएगा उसके भंडारे भरपूर रहेंगे, काल कंटक सब दूर रहेंगे। दूसरी बात, उस भोग को 108 बार मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं ये स्वामान लेकर ये सोचकर बनाना है, फिर बाबा को बड़े प्रेम से भोग लगाकर पूरे भोजन में मिक्स करना है, फिर पूरे परिवार को खिलाना है। ये भोग ही दुख भंजन भोजन बनेगा। अगर किसी को बुरी आदतें हैं, बुरी लतें हैं, व्यसन लेता है, दारू नशा कुछ करता है, तो आप कंटिन्यू इस प्रकार का भोजन खिलाइए, ये अन्न का असर मन पर इंजेक्शन की तरह काम करेगा, व्यसन छूट जाएंगे और आपके घर में सुख शांति आ जाएगी, संस्कारी बच्चे बनेंगे, घर में प्रेम बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी इस भोग लगाने से। दूसरा क्या होगा, यदि यहां मैं रोज बाबा को भोग लगाती हूं तो विनाश काल में दुनिया भूखी मरे तो मरे, लेकिन जिस घर में रोज बाबा ने भोग स्वीकार करा है, ये बाबा की ड्यूटी है, वो धरती फाड़ के दे, आसमान चीर के आपके पास दाल रोटी अंतिम श्वास तक बाबा भेजता रहेगा, आपको भूखा नहीं मरने देगा। एक जन्म तो क्या, किसी भी जन्म में वो भूखा नहीं मरेगा जिसने भगवान को भोग लगाया हो, कभी भूखा नहीं मरेगा, बल्कि उसके दरवाजे पर लेने वालों की लाइन होगी और वो दाता बनकर देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, उनका कभी खुटेगा नहीं, भरता रहेगा भरता रहेगा। ऐसी जादुई चीज है, ऐसी जादुई चीज है ये। पर शर्त एक है, जिसकी रसोई में नॉनवेज ना बनता हो उसी की रसोई का बाबा भोग स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं। अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी के घर में है तो वो महीने का महीना इकट्ठा करके सेंटर पे अपना एक बार भोग लगवा सकते हैं। ऐसे बर्तनों का, ऐसी रसोई का, ऐसे चूल्हे का बाबा स्वीकार नहीं करेगा जहां मुर्गे बकरे बनते हो, बिल्कुल नहीं खाएगा, देखेगा भी नहीं। ठीक है, तो लास्ट में कहानी सुना करके खत्म करूंगी। कृष्ण और सुदामा, नाम सुने आप सबने, कृष्ण और दोनों ही बाल सखा, एक ही गुरु से शिक्षा दीक्षा ली, एक ही गुरुकुल में लंबा समय रहे, एक ही संस्कार लिए, पर भाग्य की विडंबना देखिए, एक बन गए द्वारिकाधीश और एक महाकंगाल, गरीब दरिद्र बदनसीब। क्या गलती कर दी थी सुदामा ने? एक बार गुरु मां ने कुछ चने देकर जंगल में भेजा, लकड़ियां चुनकर ले आओ, राइट? सुदामा पेटू था, सुबह शुरू से ही उसे बहुत भूख लगती थी, बहुत खाता था, पेटू टाइप था। कृष्ण अल्पहारी थे, लकड़ी चुनते चुनते सुस्ताने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कृष्ण ने आंख बंद कर ली, ध्यान मगन हो गए। सुदामा ने सोचा इसे भूख पहले ही कम लगती है, ऊपर से सो भी गया, और सारे चने कृष्ण का हिस्सा खा गया और कंगाली अपने नाम लिखवा ली। अटेंशन, जो गलती सुदामा ने की कहीं वो गलती मैं तो नहीं कर रही, ध्यान देना इस बात का। कहीं मैं रोज रोज भगवान का हिस्सा तो नहीं खा रही, खाना चाहिए खाना चाहिए। उसने मेरी थाली में दो रोटी रखी है, उसका हिस्सा सम्मान सहित एक निवाला निकालने की ताकत मुझ में नहीं है क्या? नहीं है। उसने मेरी पॉकेट भरी है सम्मान सहित, इतना सा हिस्सा उसका निकालने की ताकत नहीं है मुझ में? उसका तो छोड़ो, अगर मैंने किसी और का भी हक मारा यहां तो एक ना एक दिन जरूर देना पड़ेगा, विद पनिशमेंट देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ना हम भगवान का हिस्सा और ना किसी और का हक, किसी का नहीं, देना ही पड़ेगा, बच नहीं सकेगा कोई, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। जब कृष्ण को पता चलता है कि सुदामा की बड़ी दयनीय स्थिति है, तन पर कपड़े नहीं, सर पर छत नहीं, पेट में अन्न नहीं, भूखों मर रहे हैं, बड़ी बुरी हालत है, बड़ी दया आती। कृष्ण को पता है इसने क्या गलती कर दी थी। उसे संकल्प भेजते हैं, तू मेरे से आकर मिल तो मैं तेरी दरिद्रता ठीक कर दूं। जाना तो चाहता है, पर भारत की एक बड़ी सुंदर कल्चर है कि जब भी प्रियजन के पास जाओ खाली हाथ, खाली हाथ केवल मृत्यु के समय जाया जाता है। जब भी किसी के दरवाजे पर जाओ, भले दो फल लेकर जाओ पर कुछ लेकर जाओ, शगुन होता है, शुभ होता है। किसी के दरवाजे पर खाली हाथ जाना अशुभ माना जाता है। वो तो मेरा प्रिय सखा है, उसके दरवाजे पर मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? उसकी धर्म पत्नी वसुंधरा कहती है, देखो मैं कुछ इंतजाम करती हूं, कुछ तो होगा मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में। सारी झोपड़ी छान मारती, तीन मुट्ठी चावल मिलते हैं सड़े गले से। कहती ये है बस सब कुछ, अपने पेट में भी भूख लगी है, पत्नी के पेट में भी भूख लगी है, बच्चे भी भूखों मर रहे हैं, एक तरफ चावल की तरफ देखता है, एक तरफ कृष्ण की तरफ देखता है, क्या करूं? खुद खा लूं, खिला दूं या ले जाऊं? उनकी धर्मपत्नी कहती है, आज यदि तीन मुट्ठी खा भी लिए कल फिर भूखे मरेंगे, कल फिर कोई रास्ता नहीं है, इससे बढ़िया तो यह है कि तुम कृष्ण के लिए ले जाओ। अपनी साड़ी का एक मैला कुचेला हिस्सा फाड़ करके बांध करके दे देती है, ले जाओ। जाते हैं सुदामा, फिर क्या क्या होता है वो आप सबको कहानियों में जैसा लिखा है पता है। अब मुद्दे की बात आती है, संध्या काल का वक्त है, श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते सुदामा तुम इतने दिनों के बाद आए, खाली हाथ आए, कुछ लाए नहीं मेरे लिए। अब सोचिए, जिसका सिंहासन सोने का, जिसकी पूरी द्वारिका सोने की, उसे कुछ चाहिए क्या? सोचिए, उसे कुछ चाहिए? ऊपर वाले को कुछ चाहिए जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जो एक सेकंड में जो चाहे वो निर्माण कर सकता है, उसे हमारे से कुछ चाहिए? उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए, हमें चाहिए। और हमारी चाहत को पूरी करने के लिए उसने कुछ विधियां बनाई हैं, कुछ नीतियां बनाई हैं। कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले को कुछ नहीं चाहिए, परंतु हमें चाहिए। लाया तो है चावल, पर उसके ठाट बाट, सोने के महल, सोने के बर्तन, सोने के सिंहासन, सोने के बेड देखकर के घबरा गया, मेरे तीन मुट्ठी चावल, संकोच आ रही है, शर्म आ रही है, कैसे दूं? छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन श्री कृष्ण को उसके भाग्य की रेखा बदलनी है। शाम का टाइम है, पर भाग्य का सूरज उगने वाला है अब। संध्या काल का टाइम है, पर भाग्य का सूरज उगने वाला है। वो पल वो क्षण अब आ गया, बड़े हक अधिकार से उसकी पोटली ले लेता, कहता सुदामा अभी तक तेरी आदत नहीं गई, छुपा रहा है मुझसे, बड़े मान सम्मान के साथ इतनी प्रेम की भेंट लाया है, एक एक चावल ये तो सोने चांदी हीरे माणिक मोती से भी कीमती है। बड़े प्यार से एक मुट्ठी भरता है, अब भूलों की भरपाई हो रही है, जो सुदामा ने भूल कर दी थी उसकी भरपाई हो रही है। एक मुट्ठी चावल खाए का सुदामा एक लोक तेरे नाम, फिर दूसरी मुट्ठी चावल की खाई और कहा सुदामा दूसरा लोक भी तेरे नाम। अब तीसरी मुट्ठी जैसे ही भरता है पूरा देव मंडल हिल जाता है, कोई रोको इसको। सुदामा कंगाल को तीनों लोक देने चला है, कोई तो रोक लो इसको। इतने में उनकी धर्म पत्नी आकर हाथ पकड़ लेती, स्वामी हमारा भी तो हिस्सा है ना, हमें भी तो दो, हम भी तो खाएंगी। उनसे पूछती है उनकी धर्म पत्नी, अपने सखा के प्रेम में इतने भाव विभोर हो गए कि अपने सहित अपना सब कुछ, श्री कृष्ण अपने सहित अपना सब कुछ, तीनों लोक सारी वैभव संपत्ति सब कुछ सुदामा को देने चले हो। तो श्री कृष्ण बड़े मुस्कुरा करके कहते हैं कि सुदामा की बारी खत्म हुई, अब बारी मेरी शुरू होती है। देखिए उसकी सारी ही संपत्ति तीन मुट्ठी चावल थे, वो चाहता तो अपने पेट की भूख शांत कर सकता था, अपने बच्चों को प्राणदान दे सकता था। उसकी सारी ही संपत्ति तीन मुट्ठी चावल थे, उसने वे तीन मुट्ठी चावल खुद नहीं खाए, मेरे लिए ले आया। अब इसकी बारी खत्म, अब मेरी बारी शुरू होती है। अब जितनी भी मेरी संपत्ति है सब सुदामा की है। जब उसने देने में संकोच नहीं किया तो अब मैं देने में संकोच क्यों करूं? एक बार दिल पर दस्तक देता है भगवान, दिल की नियत देख लेता है भगवान, और यदि नेक नियत होती है तो फिर बारी उसकी शुरू होती है, मेरी खत्म हो जाती है। और जब उसकी बारी शुरू होती है तब मेरे भंडारे भरपूर होते हैं, काल कंटक सब दूर होते हैं। ऊपर वाले भी कह रहा है, एक बार दिल से बुद्धि से तू मुझ पर समर्पित होकर तो देख, तेरी पूरी ही दुनिया सोने की ना बना दू तो कहना, पूरी ही दुनिया तेरी सोने की ना बना दू तो कहना। आज महल तो है लेकिन संतोष नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। वो ऐसा महल बनाकर देगा कि जिसमें सुख भी होगा, संतोष भी होगा, प्रेम भी होगा, शांति भी होगी। तो भावनाओं से बांधिए उसको और एक दृढ़ संकल्प करके यहां से जाएंगे कि आज से कुछ भी हो जाए, मेरा भगवान मेरी ओर से भूखा नहीं रहेगा, हम उसे भूखा सोने नहीं देंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है आज से। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। आप सभी सुखी रहिए, खुश रहिए, निरोग रहिए, भरपूर रहिए, आप सबका सदा ही मंगल हो। थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी जी का मैं दिलो जान सिखो प्रेम से धन्यवाद करना चाहती हूँ। दीदी ने आज बहुत सुंदर हमको बताया कि भोग कैसे लगाए और भोगना कैसे मिटाए, है ना। अब हम सभी बहुत प्यार से भोग लगाकर हमारे भंडारे भी भरपूर करेंगे और हम खुद भी भरपूर होंगे। अभी सभी भाई लोग जो है, जो कुमार है उनकी पिकनिक है, और जो सभी ने टिफिन लाया है वो अपना टिफिन खाएंगे। और आज का शाम का जो प्रोग्राम है,
हमने राइट हैंड में कुछ रखा है, तो सभी बहुत ही एक संकल्प करते हुए डालेंगे कि जो बाबा का नया भवन बनने वाला है, इस पवित्र धन से उसकी शुरुआत हो। मेरे इस धन से उस भवन में एक ईंट जरूर लगे। पहले बहनें आएंगी एक एक और अपने राइट हैंड का इसमें रखेंगी, लेफ्ट हैंड पर कोई सिंबल बना करके अपनी बरकत में रखेंगे, अपने घर में ले जाकर जहां आपकी बरकत होती है। ठीक है, तो आ जाएं। अभी पहले भाई आएंगे कि माताएं आएंगे? जी राइट हैंड में है, तो सबसे पहले मैं मेरा ओर से डालती हूँ,
सबसे पहले कुमार आ जाएंगे, सब में पहले कुमार आ जाएंगे। और आज